कायरव, हमें तो मानव और नित्या को सी ऑफ करने जाना था। हमें तो इतना लेट हो गया, उनकी फ्लाइट तो निकल गई होगी ना। जब से दोनों कार में बैठे थे तभी से उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा था। इनाया बिल्कुल शांत बैठी विंडो से बाहर देख रही थी और कायरव उसे संभलने के लिए वक्त दे रहा था। उसने इनाया की हथेली को गियर पर रखा हुआ था और कार ड्राइव करते हुए धीरे धीरे उसकी हथेली को अपनी हथेली से सहला रहा था। एक लंबी खामोशी के बाद उनके बीच पसरे सन्नाटे को चीरती हुई इनाया की मायूसी भरी सौम्य सी आवाज कायरव के कानों से टकराई और उसने तुरंत ही सर घुमाकर उसे देखा। इनाया मुंह लटकाए उदास निगाहों से उसे देख रही थी। कायरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, उनकी फ्लाइट अब तक टेक ऑफ कर चुकी होगी, बट तुम टेंशन मत लो। आने से पहले मैंने मानव को मैसेज कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे, वो पहुंचकर कॉल कर ले। उसने ओके कहा था। अभी तुम रिलैक्स करो, खुद को शांत करो। जब मानव का कॉल आएगा तब दोनों से बात करेंगे। और आज हम उन्हें सी ऑफ करने नहीं जा पाए, इसलिए जब वो वापस आएंगे तो हम उन्हें रिसीव करने चलेंगे, ओके? इनाया ने सर हिला दिया। कायरव ने धीरे से उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाया और वापस नजरें सामने की तरफ घुमा ली। इनाया कुछ देर टकटकी लगाए उसे देखती रही, फिर अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकाला और उसकी बांह पर लपेट दिया। हल्का झुकी और सर उसके कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। कायरव पहले तो चौंका, फिर गहरी मुस्कुराहट के साथ उसके माथे को चूम लिया। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, इतना स्ट्रेस तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ, सब कुछ अपने पापा पर छोड़ दो और तुम बस हमारे आज और आने वाले कल के बारे में सोचो, हमारे बच्चे पर ध्यान दो, इस वक्त वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनाया धीरे से सर हिला दिया, वो अब काफी हद तक संभल चुकी थी। कायरव, हम काकी को लेने कब चलेंगे? कुछ देर की खामोशी के बाद इनाया ने सवाल किया, जिस पर कायरव सहजता से बोला, मैंने ड्राइवर भेज दिया है, अभी तक तो शायद वो घर पहुंच भी गई होंगी। इनाया के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। सर उठाए वो कुछ देर एकटक कायरव को बीकती रही। कितना सोचता था वो उसके और उससे जुड़े लोगों के बारे में। मानव और नित्या हनीमून पर जाने वाले थे, उनके जाने के बाद वहां अनीता जी अकेली हो जाती, इसलिए कायरव ने ही ये एडवाइस दी कि जितने दिन वो दोनों यहाँ नहीं हैं अनीता जी उनके साथ रहें तो ठीक रहेगा। अनीता जी को मनाया भी उसने और अब उसने ड्राइवर को भेजकर उन्हें बुला भी लिया। आई लव यू, इनाया ने धीरे से अपने सुर्ख होंठों से उसके होंठों को छू दिया। कायरव ने चौंकते हुए नजरें झुकाकर इनाया को देखा। मोहब्बत भरी निगाहों से वो बड़े ही प्यार से उसे निहार रही थी। लव यू टू, कायरव ने भी उसके सुर्ख होंठों को हल्के से चूम लिया और दोनों के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। दूसरी तरफ मिसेज रायचंद अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी। मिस्टर रायचंद गुस्से से बौखलाए मेंशन में बने बार में बैठे गुस्से में ड्रिंक कर रहे थे और मिसेज रायचंद तन्हा अकेली बैठी सामने की दीवार को घूरे जा रही थी। उनकी आंखों के आगे कभी प्रकाश जी का तो कभी इनाया का चेहरा घूम रहा था। कानों में कुछ आवाजें गूंज रही थी। इनाया प्रकाश की बेटी है, उनके होंठ फड़फड़ाए। जहन में प्रकाश जी का चेहरा उभरा और आंखों के आगे कुछ धुंधली तस्वीरें घूमने लगीं। उनका दिमाग उन्हें कई सालों पीछे ले गया और देखते ही देखते वो अतीत की यादों में खो गईं। ये उन दिनों की बात थी जब उनकी शादी नहीं हुई थी। उनकी जिंदगी किसी फेरी टेल जैसी हुआ करती थी। वो कितनी खुश थीं, उनकी लाइफ में सब कुछ था। एकलौती बेटी थीं तो पेरेंट्स ने उन्हें राजकुमारी जैसे पाला था। कॉलेज में थीं जब उन्हें उनके सपनों का राजकुमार मिला और वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश जी ही थे। वो उनके जितने अमीर तो नहीं थे लेकिन उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते थे, उनके ही ऑफिस में काम करते थे, उसके डैड के पीए थे तो घर आना जाना लगा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी और शादी भी करना चाहते थे। लाइफ बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसे चल रही थी, लेकिन कोई सपना कभी ज्यादा वक्त तक कहाँ ठहरता। हर ख्वाब को एक ना एक दिन टूटना ही होता है। उनका सपना भी टूटा जब उनका सामना लाइफ की रियलिटी से हुआ। उनके डैड को उनके लव अफेयर के बारे में पता चला और उन्होंने प्रकाश जी को जॉब से निकाल दिया। अपनी जिस बेटी की हर ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले पूरी की, हमेशा उसे खुश रखा, उसी बेटी से उसकी मोहब्बत छीनकर उसकी आंखों में आंसू भर दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिससे उनकी बेटी को मोहब्बत हुई वो उनकी बराबरी का नहीं था। अपने प्यार से जुदा होने के बाद वो बिखर गई थीं। तब उनके डैड ने उनकी मुलाकात करवाई मिस्टर रायचंद से। उनकी मॉम ने उन्हें बहुत समझाया और आखिर में अपने ब्राइट फ्यूचर के सपनों के बहकावे में आकर वो मिस्टर रायचंद से मिलने के लिए तैयार हो गईं। पहली ही मुलाकात में उनके लुक्स और पर्सनैलिटी पर फिदा होने से वो खुद को रोक नहीं सकीं। उस टाइम मिस्टर रायचंद का चार्म ही अलग था, लड़कियां मरती थीं उन पर। वो भी अट्रैक्ट हो गईं, मिलना जुलना बढ़ा। उस टाइम मिस्टर रायचंद भी उन्हें बिल्कुल प्रिंसेस जैसे ट्रीट करते थे। धीरे धीरे वो उनकी तरफ झुकाव महसूस करने लगी। जो प्यार उन्हें अपने लवर से मिलता था वो मिस्टर रायचंद से मिला तो बहक गई और उसके बाद दोनों की शादी हो गई। उन्हें नहीं पता था कि वो सब तो सिर्फ नाटक था। असल में मिस्टर रायचंद की उनके डैड से डील हुई थी। इस शादी के बदले उन्हें इन्वेस्टमेंट मिली थी और साथ ही मिली थी मिसेज रायचंद के हिस्से की प्रॉपर्टी और शेयर्स। शादी के शुरुआती टाइम में तो उनकी लाइफ में सब ठीक ही रहा। वो मिस्टर रायचंद के साथ खुश थी और प्रकाश जी को कुछ इस तरह भूल चुकी थी जैसे वो कभी उनकी लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखते थे। लेकिन धीरे धीरे सब बदलता गया। मिस्टर रायचंद की असलियत उनके सामने आई और उनके सपनों का महल पल में टूटकर बिखर गया। उसके बाद हालात कभी सुधरे ही नहीं बल्कि बीतते वक्त के साथ बिगड़ते ही गए। जब सपनों का महल टूटा और जिंदगी ने उनके मुंह पर सच्चाई का तमाचा मारा तब उन्हें प्रकाश जी की याद आई और अपने फैसले पर बेहद अफसोस हुआ। लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें आज भी वो दिन याद था जब प्रकाश जी उनके घर आए थे उनके डैड से रिश्ते की बात करने। लेकिन तब तक वो माँ बन चुकी थी, कायरव दुनिया में आ चुका था। प्रकाश जी ने तो यहाँ तक कहा था कि वो उन्हें उनके बच्चे के साथ अपना लेंगे, बस वो वापस उनकी जिंदगी में आ जाएं। लेकिन तब उन्होंने उनके प्यार को क्या ठुकराया। उसके बाद जिंदगी भर बस ठोकरें ही खाती रहीं। जलील करके प्रकाश जी को उनके घर से बाहर निकाला गया था और उन्होंने रोकने की कोशिश तक नहीं की थी। तब उन्हें नहीं पता था कि प्रकाश जी ने उनके काबिल बनने के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन आज जब उनका सामना हकीकत से हुआ तो वो अपनी ही नजरों में और ज्यादा गिर गईं। प्रकाश, ये क्या किया तुमने? मिसेज रायचंद के इन शब्दों में गहरा अफसोस, दुख और पछतावा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो झुकी पलकों के आगे रोती बिलखती इनाया का मासूम दर्द से सना चेहरा आ गया। उनकी बाएं आंख से आंसू की एक बूंद फिसलकर उनके गाल पर बिखर गई। देखते देखते एक हफ्ते की जगह 15 दिन बीत चुके थे। वैसे तो मानव ने 1 वीक का ही हनीमून प्लान किया था लेकिन कायरव ने उसे बढ़ाकर 15 दिन कर दिया था। इन 15 दिनों में उन्होंने लगभग पूरा राजस्थान घूम लिया था। हर टेंशन से दूर दोनों ने एक दूसरे के साथ को खुलकर जिया, हर लम्हा एंजॉय किया, ढेर सारे प्यार भरे पल बिताए साथ में। फोन पर उनकी कायरव, इनाया और अनीता जी से बात भी होती थी। नित्या बेहद खुश थी और उसकी खुशी उसके हर अंदाज में झलकती थी। उसे मानव के साथ खुश देखकर मिस्टर शेरगिल और दादाजी भी पुरसुकून थे।
इन दिनों अनीता जी कायरव और इनाया के साथ रह रही थीं। उनके आने से कायरव की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो गई थीं। अनीता जी साथ रहती तो इनाया का ख्याल रख लेती और इनाया लड़ झगड़कर जबरदस्ती कायरव को ऑफिस भेज देती थी और अनीता जी के साथ पूरा दिन मजे से रहती। धीरे धीरे वो उन बातों को भूल गई थीं और अब उन्हें बड़ी ही बेसब्री से उनके बेबी के इस दुनिया में आने का इंतजार था। मिस्टर रायचंद जख्मी शेर जैसे बदले की आग में जल रहे थे और बस एक मौके की तलाश में थे। मिसेज रायचंद गुमसुम सी रहने लगी थीं। उन्होंने बाहर जाना छोड़ दिया था, खुद को एक रूम में कैद कर लिया था और बस बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती थी। शाम का वक्त था। आज मानव और नित्या वापस आने वाले थे इसलिए अनीता जी सुबह ही उनके वेलकम की तैयारी करने घर चली गई थीं। कायरव और इनाया उन्हें पिक करके वहां जाने वाले थे। आज का सबका डिनर वहीं होना था। इनाया और कायरव दोनों रेडी थे और निकलने ही वाले थे कि उनके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। इस वक्त कायरव इनाया का हाथ थामे बाहर ही जा रहा था जब उस कार की आवाज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कायरव और इनाया दोनों सर घुमाकर सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि इस वक्त यहाँ कौन आया है। फिर दोनों ने ही कंधे उचका दिए। इतने में कदमों की आहट हुई और दोनों की निगाहें सामने की तरफ उठ गई। जैसे ही उनकी नजर सामने से आते शख्स पर पड़ी, उनके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गईं।